और उसकी सल्तनत के 9वें बरस के 10वें महीने के 10वें दिन यूँ हुआ कि साहिब-बाबिल नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबले खैमा जन हुआ और उन्होंने उसके मुकाबले गिरदागिर हसार बनाए और सदकिया बादशाह की सल्तनत के 11वें बरस तक शहर का मुहासरा रहा और 4वें महीने के 9वें दिन से शहर में काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क के लोगों के लिए खोरिश ना रही। तब शहर पनाह में रखना हो गया और दोनों दीवारों के दरमियान जो फाटक साहिबाग के बराबर था उससे सब जंगी मर्द रात ही रात भाग गए। उस वक्त कसदी शहर को घेरे हुए थे और बादशाह ने बियाबान का रास्ता लिया, लेकिन कसदियों की फौज ने बादशाह का पीछा किया और उसे यरू के मैदान में जा लिया और उसका सारा लश्कर उसके पास से प्रागंदा हो गया था। तो वो बादशाह को पकड़कर रिबला में साहिब-बाबिल के पास ले गए और उन्होंने उस पर फतवा दिया और उन्होंने सदकिया के बेटों को उसकी आंखों के सामने जबा किया और सदकिया की आंखें निकाल डाली और उसे जंजीरों से जकड़कर बाबुल को ले गए। और साहिब-बाबिल नबूकदनेस्सर के अहद के 19वें बरस के 5वें महीने के 7वें दिन साहिब-बाबिल का एक खादिम नबूजादान जो जलूदारों का सरदार था यरूशलम में आया और उसने खुदावन का घर और बादशाह का कसर और यरूशलम के सब घर यानी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया और कसेदियों के सारे लश्कर ने जो जलूदारों के सरदार के हमरा था यरूशलम की फसील को चारों तरफ से गिरा दिया और बाकी लोगों को जो शहर में रहते थे और उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर साहिब-बाबिल की पनाह ली थी और आवाम में से जितने बाकी रह गए थे उन सब को नबूजादान जलूदारों का सरदार असीर करके ले गया। पर जलूदारों के सरदार ने मुल्क के कंगालों को रहने दिया ताकि खेती और पाकिस्तानों की बागबानी करें और पीतल के उन सतूनों को जो खुदावन के घर में थे और कुर्सियों को और पीतल के बड़े हौज को जो खुदावन के घर में था कसदियों ने तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया और उनका पीतल बाबुल को ले गए और तमाम देगे और बेलचे और गुलगीर और चमचे और पीतल के तमाम बर्तन जो वहाँ काम आते थे ले गए और अंगीठियाँ और कटोरे वर जो कुछ सोने का था उसके सोने को और जो कुछ चांदी का था उसकी चांदी को जलदारों का सरदार ले गया। वो दोनों सुतून और वो बड़ा हौज और वो कुर्सियाँ जिनको सुलेमान ने खुदावन के घर के लिए बनाया था इन सब चीजों के पीतल का वजन बेहिसाब था। एक सतून 18 हाथ ऊंचा था और उसके ऊपर पीतल का एक ताज था और वो ताज 3 हाथ बुलंद था। उस ताज पर गिरदागिर्द जालियां और अनार की कलियां सब पीतल की बनी हुई थी और दूसरे सतून के लवाजम भी जाली समेत इन्हीं की तरह थे और जलेदारों के सरदार ने सिराया सरदार काहिन को और काहिने खानी सफीनिया को और तीनों दरबारों को पकड़ लिया और उसने शहर में से एक सरदार को पकड़ लिया जो जंगी मर्दों पर मुकर्रर था और जो लोग बादशाह के हजूर हाजिर रहते थे उनमें से 5 आदमियों को जो शहर में मिले और लश्कर के बड़े मुहर्रर को जो अहले मुल्क की मजूदात लेता था और मुल्क के लोगों में से 60 आदमियों को जो शहर में मिले इनको जलूदारों का सरदार नबूजादान पकड़कर साहिब-बाबिल के हजूर रिबला में ले गया और साहिब-बाबिल ने हमास के इलाका के रिबला में इनको मारा और कत्ल किया। तो यहूदा भी अपने मुल्क से असीर होकर चला गया اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبوکدنصر صاحب بابل نے چھوڑ دیا ان پر اس نے جبلیہ بن اقیقام بن ساسن کو حاکم مقرر کیا. جب جتھوں کے سب سرداروں اور ان کی سپاہ نے یعنی اسماعیل بن نتنیہ اور یوحنان بن کرے اور سرایا بن تنہومت نتوفاقی اور زنایا بن مکاتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جبلیہ کو حاکم بنایا ہے تو وہ اپنے لوگوں سمیت مصفہ میں جبلیہ کے پاس آئے اور جبلیہ نے ان سے اور ان کی سپاہ سے قسم کھا کر کہا کہ قیدیوں کے ملازموں سے مت ڈرو، ملک میں بسے رہو اور شاہ بابل کی خدمت کرو اور تمہاری بھلائی ہوگی. مگر ساتویں مہینے ایسا ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن الاسمہ جو بادشاہ کی نسل سے تھا اپنے ساتھ 10 مرد لے کر آیا اور جبلیہ کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا اور ان یہودیوں اور کشیدیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفہ میں تھے قتل کیا. تب سب لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے اور جتھوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے کیونکہ وہ کشیدیوں سے ڈرتے تھے. اور یہویاکیم شاہی یہودا کی اسیری کے 37 برس کے 12 مہینے کے 27 دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اویل مردوک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہویاکیم شاہی یہودا کو قید خانہ سے نکال کر سرفراز کیا اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی. تو وہ اپنے قید خانہ کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی.